ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। स्वास्थ्य कर्मी की पेशागत सुरक्षा और वृत्ति विकास के लिए सरकार गंभीर है, प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड का कथन। सोने की अवैध तस्करी नियंत्रण संबंधी जांचबूझ आयोग द्वारा कार्य प्रारंभ। राष्ट्रीय विटामिन ए कार्यक्रम आगामी कार्तिक 17 और 18 गति किया जाएगा संचालन। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला नॉर्वे के लेखक यून फोसा को। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि लोगों के इलाज में सक्रिय स्वास्थ्य कर्मियों की पेशागत सुरक्षा, हित और वृत्ति विकास के लिए सरकार सचेत और गंभीर है। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के चौथे दीक्षांत समारोह को आज संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मरीजों के इलाज में क्रियाशील स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर हो रहे सिलसिलेवार हमले उचित नहीं है। प्रधानमंत्री दहाल ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ मरीजों के इलाज में सक्रिय होने का चिकित्सकों से अपील की। प्रतिष्ठान के कुलपति समेत रहे प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान बीर अस्पताल को और अधिक विस्तार तथा सुविधा संपन्न बनाने के लिए सरकार निवेश करेगी। उन्होंने नर्सिंग सेवा से संबंधित जटिलताओं का संबोधन करने के लिए आवश्यक पहल करेंगे। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड से भाषा आयोग के अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों ने आज भेंटवार्ता की। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में प्रधानमंत्री प्रचंड से मुलाकात के दौरान आयोग के पदाधिकारियों ने आयोग के भीतर रहे प्रबंध की समस्या और समाधान के विषय में विचार विमर्श किया। आज ही नेपाल ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने ट्रस्ट के नाम पर रहे संपत्ति और उपयोग के विषय में प्रधानमंत्री प्रचंड से विचार विमर्श किया। इसी तरह प्रधानमंत्री प्रचंड से निर्माण व्यवसायी महासंघ के अध्यक्ष रवि सिंह लगायत के प्रतिनिधि मंडलों ने आज भेंटवार्ता की। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने बाझांग जिला और आसपास के क्षेत्र केंद्र बिंदु होकर आए भूकंप से पीड़ित और प्रभावित जनता को तत्काल राहत, उद्धार और व्यवस्थापन के लिए निर्देशन दिया है। आज विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद के 12वें बैठक में प्रधानमंत्री प्रचंड ने मंगलवार को आए भूकंप से बाझांग और आसपास के क्षेत्रों में भूकंप से हुए मानवीय और भौतिक क्षति के राहत और व्यवस्थापन के लिए सभी क्षेत्रों में समन्वय करने का काम करने के लिए निर्देशन दिया है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने अभी तक के उद्धार, राहत और व्यवस्थापन में हुए पहलकदमी के लिए संबंधित सभी को धन्यवाद भी दिया। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में विद्युत विधेयक 2080 पेश किया गया। बैठक में ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर बसनेत ने विद्युत विधेयक 2080 पेश किया। इसी तरह प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने प्रतिनिधि सभा के पूर्व सदस्य खेमराज भट्ट मायालू के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया। स्वर्गीय भट्ट का इसी आश्विन 4 गते फेफड़े की कैंसर का इलाज के दौरान 73 वर्ष के उम्र में निधन हो गया था। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने विधायन संबंधी विधेयक के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। बैठक में कानून, न्याय तथा संपन्नराज गुरुंग ने विधेयक के ऊपर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कानून निर्माण में एकरूपता लाने के लिए विधेयक महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व बैठक में सांसदों ने समसामयिक विषयों पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए योगराज ढकाल रिगल की कैद छूट करने का कारण बताने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डॉ मनोज कुमार शर्मा की एकल पीठ ने निवेदक की मां के मुताबिक उत्प्रेरणा का आदेश जारी क्यों नहीं किया गया, इस बारे में मनासिब कारण इसी आश्विन 24 गते शाम 5 बजे के भीतर लिखित जवाब पेश करने का भी विपक्षी के नाम आदेश जारी किया है। आश्विन 25 गते की पेशी में महान्यायाधिवक्ता को भी बहस के लिए उपस्थित होने की बात आदेश में उल्लेख किया गया है। इसी आश्विन 3 गते संविधान दिवस के अवसर पर मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने योगराज ढकाल की कैद छूट की थी। रिगल की कैद मिन्हा करने के निर्णय के बाद चेतन की पत्नी भारती शेरपा ने रिगल की कैद मिन्हा के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुदन किराती ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन आईकोर ने नेपाल के हवाई क्षेत्र सुरक्षित होते जा रहा है, इसलिए काला सूची से हटाने का प्रक्रिया शुरू किया गया है। आज प्रतिनिधि सभा के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पर्यटन समिति की सिंह दरबार में हुई बैठक में मंत्री किराती ने कहा कि बीते साल काला सूची को से हटाने के समय पोखरा में एती एयरलाइंस के जहाज दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण प्रक्रिया लंबे समय तक चली है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने नेकपा माओवादी केंद्र के सचिव डीलाराम आचार्य के स्वास्थ्य अवस्था के बारे में जानकारी लिया है। सचिव आचार्य के बीर अस्पताल में स्वास्थ्य इलाज चल रहा है। पार्टी अभियान के दौरान आसाम पहुंचे आचार्य के स्वास्थ्य में समस्या दिखे जाने के बाद कल काठमांडू लाया गया था। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। धुलीखेल अस्पताल में ट्रमा और आकस्मिक केंद्र विस्तार के लिए जापान सरकार करीब 2.95 अरब रुपए का अनुदान सहयोग करेगी। आज अर्थ मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में अर्थ सचिव कृष्ण हरि पुष्कर और नेपाल के लिए जापान के राजदूत किकुता युताका की उपस्थिति में अर्थ मंत्रालय के सह सचिव श्रीकृष्ण नेपाल और जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नियोग जाइका नेपाल कार्यालय के प्रमुख प्रतिनिधि ओकुबो अकिमित्सु ने द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन को एकीकृत कर स्वतंत्र प्रसारण निकाय सार्वजनिक सेवा प्रसारण में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। सार्वजनिक प्रसारण विधेयक राष्ट्रीय सभा से पारित होने के बाद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति में विमर्श के लिए प्रस्तुत किया गया है। ये जानकारी संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने दी। सरकार ने कहा कि बच्चों को इस साल के राष्ट्रीय विटामिन ए खिलाने का कार्यक्रम कार्तिक 17 और 18 गते संचालन की जाएगी। 2080-81 के नियमित रूप में पहले चरण में कार्तिक 2 और 3 गते विटामिन ए कैप्सूल 6 महीने से 59 महीने तक के बच्चों को तथा कीड़े की दवा 1 साल से 5 सालों तक के बच्चों को खिलाया जाएगा। ये जानकारी स्वास्थ्य सेवा विभाग के बाल तथा टीका शाखा के प्रमुख डॉ. अभियान गौतम ने दी। नेपालगंज उपमहानगरपालिका में अनिश्चितकाल के लिए लगाई कर्फ्यू को आज सुबह 8 बजे से आंशिक रूप से ढील दी गई है। हालांकि रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्ववतः रूप से कर्फ्यू जारी रहेगा। जिला प्रशासन कार्यालय बांके ने आज सुबह एक सूचना जारी करते हुए ये जानकारी दी। सोने की अवैध तस्करी नियंत्रण संबंधी छानबीन आयोग 2080 ने आज से अपना काम शुरू कर दिया है। सिंह दरबार स्थित गृह मंत्रालय के पुराने भवन में आयोग ने अपने कार्यालय की स्थापना किया। बता दें कि त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से अवैध रूप में सोने की तस्करी करने के विषय में छानबीन करने के लिए सरकार ने आश्विन 14 गते उच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश दिल्ली राम आचार्य के संयोजकत्व में 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन लेखक जान फासे को दिया गया है। जान फासे को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो अनकही को आवाज देते हैं। बता दें कि नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। स्वीडिश अकादमी द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसके साथ ही विजेताओं को नगद 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन यानी लगभग $1 मिलियन दिया जाता है। स्वीडिश अकादमी के स्थायी सचिव मैट्स माल्म ने गुरुवार को स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार का ऐलान किया। साल 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार साहित्य विज्ञान और शांति में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं। इस पुरस्कार को स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के तौर पर देखा जाता है। बाद में पुरस्कार में स्वीडिश केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र को भी शामिल किया गया। शांति पुरस्कार के साथ साथ साहित्य पुरस्कार ने लोगों का ध्यान खींचने का काम किया है और इसकी बदौलत लेखकों को वैश्विक सुर्खियां मिलती है। पिछले कुछ सालों में साहित्य पुरस्कार के लिए परंपराओं से हटकर नाटककार, साहित्यकार, दार्शनिक और कवियों को भी चयन किया गया है। पिछले साल फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नाक्स ने यह पुरस्कार जीता था। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्यकर्मी की पेशागत सुरक्षा और वृत्ति विकास के लिए सरकार गंभीर है, प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड का कथन। सोने की अवैध तस्करी नियंत्रण संबंधी जांचबूझ आयोग द्वारा कार्य प्रारंभ। राष्ट्रीय विटामिन ए कार्यक्रम आगामी कार्तिक 17 और 18 गते किया जाएगा संचालन। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला नॉर्वे के लेखक यून फूसा को। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।